पर आजजी के साथ चलते हैं। मुबारक दो चीजें बहुत अहम तरीके से पता चली, दो अहम चीजें पता चली। एक तो ये कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं, अल्लाह के इबादत गुजार बंदे जो होते हैं, उनके अंदर सिर्फ आजजी भरी नहीं होती, बल्कि उनके जाहिरी अतवार से भी आजजी नजर आती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि चलते हुए भी उनको देखोगे तो देख के पता चल जाएगा कोई आजिज बंदा। ये अल्लाह के वाकई पसंदीदा तरीन बंदे हैं जो जमीन पर आजजी के साथ चलते। क्यों अल्लाह के पसंदीदा तरीन बंदे हैं? क्योंकि इनको हकीकत से वाकफियत है कि इंसान की कोई वक्त नहीं, इंसान की कोई कदर नहीं, इंसान असल में एक गंदे पानी का दुखा है। उसको जो इज्जत और जो शराफत मिली है, उसको जो ताकत मिली है, उसको जो ओहदा मिला है, वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। तो जो आजजी के साथ जमीन पे चल रहा है, लोग तो उसको भोला कहेंगे, कोई उसको बेवकूफ कहेगा, कोई उसको कुछ कहेगा, मगर सच्ची बात यह है कि अल्लाह ने उसके बारे में कहा कि ये मेरा असल बंदा है, ये हकीकत से वाकिफ बंदा है। तो पहली बात तो ये इस मुबारक आयत से पता चली कि आजजी सिर्फ अंदर कोई रखी हुई चीज नहीं, ये अगर अंदर है तो ये बाहर भी नजर आएगी। और दूसरी बात इस मुबारक आयत से ये भी पता चली कि अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह के इबादत गुजार बंदे वो हैं जो आजजी करते हैं। तो मतलब ये है कि जिसने आजजी नहीं की, चाहे वो जाहिरन कैसा ही नेक नजर क्यों आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इबादत से दूर कर देंगे। तो आजजी होगी तो इबादत की तौफीक मिलती रहेगी, आजजी नहीं होगी तो अल्लाह को हमारी इबादत की कोई जरूरत नहीं है। ये इबादत एक बहुत बड़ी सआदत है और ये हर एक को नहीं दी जाती है। इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात और बादशाहों से मुलाकात तो सआदत है। आज मुल्क के बादशाह जो है उससे आप जितना भी इख्तलाफ करें, मगर अगर वो कहेगा मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ, आप अपने हर दोस्त को बताएंगे कि ये मुल्क के सदर साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। तो बादशाहों से मुलाकात बड़ी सआदत होती है, बड़ी बात होती है। इसी तरह ये इबादत जो है ये उस बादशाह से मुलाकात है जो तमाम कायनात का मालिक है, और ये इबादत की तौफीक, ये मुलाकात की तौफीक उसी बंदे को मिलती है जिसमें आजजी होती है। जिसमें आजजी नहीं इबादत से महरूम कर दिया। इसीलिए मशाइख के तजुर्बा किताबों में लिखा है कि जिस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चाहे उसका जाहिरी वजह पता कैसा ही क्यों ना हो, बड़ा नेकों वाला हो, मगर आम तौर पे इबादत की लज्जत उसके दिल से निकाल दी जाती है। ये मुतकब्बिर इंसान। इस मुबारक आयत से भी दो अहम बातें पता चलती, आजजी अगर अंदर है तो बाहर भी नजर आएगी, उसकी चार ढाल में आजजी नजर आएगी जो आजिज बंदा होगा, और मुतकब्बिर बंदे की चार ढाल में उसका तकब्बुर नजर आएगा। और इसी तरह इस मुबारक आयत से पता चलता है कि आजिज बंदों ही को अल्लाह अपनी इबादत की तौफीक देंगे। जहां इंसान खुदकने लगा, ऊंचा होने लगा, अपने आप को बड़ा समझने लगा, छोटी छोटी बातों पे तबीयत नाराज होने लगी, तो वहीं पे इबादत का चैप्टर क्लोज कर दिया। इसीलिए इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दद थानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक अल्लाह का मुकर्रब वली नहीं बन सकता जब तक कि अपने आप को एक खसीस कुत्ते से भी कमतर ना समझे। तो पता चला जब तक आजजी है तब तक अल्लाह का कुर्ब है, और आजजी नहीं है तो इबादत वगैरह सारों की तौफीक छीन ली जाती, हर इबादत से लज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए जो मशाइख के पास आना जाना, मशाइख के साथ इस्लाह का ताल्लुक रखना, इस सब का जो एंड गोल है ना, आखिरी मकसद जो है वो आजजी ही का पैदा होता है। हजरत अक्दस खानवी रहमतुल्लाह अलैह से हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि हजरत ये तसव्वुफ क्या बला है, हजरत ये तसव्वुफ क्या बला है। हजरत ने फरमाया कि तसव्वुफ अपनी मैं को मिटाने का दूसरा नाम। तो सारा ये मशाइख के पास आना जाना, इस्लाह का ताल्लुक, ये सब कुछ इसलिए कि इंसान अपने आप को एक गिरी हुई चीज समझने लगे। जब तक अपने आप को कोई बड़ी चीज समझेंगे तब तक इबादत की लज्जत से, इबादत की तौफीकों से महरूम पाएंगे। ये जो तकब्बुर है ना, इसको मशाइख ने फरमाया कि ये उम्मुल अमराज है। यानी अगर इंसान के अंदर ये तकब्बुर है तो उसके अंदर बाकी तमाम बातनी अमराज भी मौजूद है। ये उम्मुल अमराज यानी बातनी अमराज की माँ है, बातनी अमराज का सर चश्मा है। इसीलिए जिस शख्स में तकब्बुर है उस शख्स में गुस्से वाला गुनाह भी मौजूद है, गुस्से वाला बातनी मर्ज भी मौजूद है। तकब्बुर जो है अपने आप को बड़ा जो समझता है, इसलिए अब तबीयत के खिलाफ कोई चीज होती है तो गुस्सा आ जाता है। किसी एक बात पे गुस्सा आया हुआ है तो दूसरी बात इतने गुस्से वाली है भी नहीं, फिर भी गुस्सा आ रहा है। तो जो गुस्सा बार बार आता है और हर वक्त इंसान को छोटी चीज की चीज जो है वो तैश में ले आती है, तो इसका मतलब ये है कि तकब्बुर भरा हुआ है। तकब्बुर होगा तो गुस्सा लाजमी होगा, और गुस्सा अगर है तो तकब्बुर लाजमी है। तो जिसके अंदर तकब्बुर उसके अंदर गुस्सा भी मौजूद, जिसके अंदर तकब्बुर उसके अंदर रियाकारी की बातनी बीमारी भी मौजूद। और रियाकारी की बातनी बीमारी छोटी बातनी बीमारी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने इबादत की दिखलावे के लिए रिया के लिए की उसने तो शिर्क कर दिया। तो वो तकब्बुर शख्स के अंदर रिया तो फूट फूट के भरी होती है। अपने आप को जो बड़ा समझ रहा होता है और हर वक्त अपने आप को बड़ा देखना चाहता है, तो अगर कभी कोई इबादत हो भी गई या कोई अच्छा काम हो भी गया तो अब दिल यही चाह रहा होता है कि लोग इसको देखें और इसको देख के फिर कहें कि हाँ जी ये बड़ा है। तो जिसके अंदर तकब्बुर उसके अंदर गुस्सा मौजूद, जिसके अंदर तकब्बुर उसके अंदर रिया मौजूद, जिसके अंदर तकब्बुर उसके अंदर हसद भी मौजूद होती है। हमारे शहर के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत सैयद जब्बार हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले भी थे और बड़े फकीह भी थे। चुनाचे है इस दौर में बड़ी दो जबरदस्त किताबें, तसव्वुफ पे भी बेहतरीन किताब हजरत ने लिख दी और किताबें भी बेहतरीन किताब लिख दी। तसव्वुफ वाली किताब का नाम रखा उम्दतुस सुलूक और फिका वाली किताब का नाम रखा उम्दतुल फिका, और बड़ी जबरदस्त अल्लाह वाले थे। वो फरमाते हैं कि जिस बंदे के अंदर तकब्बुर होगा उसके अंदर हसद लाजमी होगा। जो अपने आप को ऊंचा देखना चाहता है वो किसी और को ऊंचा हुए में देख ही नहीं सकता। तो ये जो हसद दिल में आती है दूसरों को कामयाब होते हुए देख के तकलीफ होती है, दूसरों को रिस्क में आगे होते हुए देख के परेशान होते हैं, दूसरों की इज्जत बढ़ते हुए देख के जो परेशानी दिल में आती है ये निशानी है कि हसद भी है, मगर ये निशानी है कि तकब्बुर भी मौजूद है। तो कई मरतबा इंसान जो है जाहिरन जो है उसका शक्ल से या उसकी बातों से ये नहीं पता चलता कि मुतकब्बिर है, मगर वो खुद जज कर सकता है कि अंदर तकब्बुर मौजूद है या नहीं। तो मशाइख ने फरमाया कि मुतकब्बिर शख्स के अंदर तमाम बातनी बीमारियां मौजूद होगी, तो उसके अंदर रिया भी है, उसके अंदर गुस्सा भी है, उसके अंदर हसद भी है, इसी तरह मुतकब्बिर शख्स के अंदर हिर्स भी मौजूद होती है। ये जो माल की हिर्स और माल की चाहत है, ये मुतकब्बिर शख्स में लाजमी मौजूद होगी। क्यों मौजूद होगी? ये माल की चाहत को छोटा गुनाह नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुब्बु दुनिया रासु कुल्ली खतीए। ये दुनिया के पीछे भागने वाला, दुनिया से मोहब्बत रखने वाला, ये दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है और हर गलती की जड़। और एक हदीस में आया कि नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बर्बाद हो गया दिरहम और दीनार का खुदा, कि जिसके दिमाग में सिर्फ माल पैसा ही घूम रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया बर्बाद हो। तो मुतकब्बिर शख्स के अंदर ये भी मौजूद, माल की हिर्स क्यों मौजूद? क्योंकि फिर से शौक तो बड़ा होने का है कि मैं बड़ा हूं, और पता चला कि जी जो है माल वाला होता है उसको बड़ा समझा जाता है, तो अब माल के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है कि जी बड़ा तो वही समझा जाता है जिसके पास माल ज्यादा, तो अब मेरे पास भी माल ज्यादा होना चाहिए, इसलिए इस माल के लिए करीबी रिश्तेदारों से भी लड़ता है, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, अपने बच्चों बीवी से भी माल के लिए लड़ बैठता है। ये माल के अंदर इस जाल में फंस जाना, ये सबसे बड़ा जाल है। क्योंकि नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दुनिया है ना, ये एक जादूगरनी है, इसकी चालों में अगर एक बार दफा फंस गए तो समझ ले जादू में फंस गए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दुनिया जादूगरनी है, और ये सबसे बड़ा जाल इसलिए भी है कि ये जो दुनिया का शौक आ जाता है ना, माल का शौक, माल के मुकाबले का शौक, इसके पास ऐसी गाड़ी है तो मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, इसके पास ऐसा फोन है तो मेरे पास ऐसा फोन होना चाहिए, इसके पास ऐसा घर तो मेरे पास ऐसा घर, ये हर वक्त ये दिमाग में यही तो चल रहा होता है ना। इस बातनी मर्ज के बारे में अल्लाह ने भी फरमा दिया, अल्हाकुम अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकार, ये ऐसा बातनी मर्ज है माल में मुकाबले करने वाला, ये तुम्हारी कब्र तक तुम्हारे साथ रह गए, इस जाल में फंस गए, अब निकलना बहुत मुश्किल। हर वक्त बस यही लड़ाई, नजर खुली कि किसी के पास कोई चीज दुनिया की आ जाए तो वो मेरे पास होनी चाहिए, और किसी के पास कोई चीज दुनिया की आ गई तो बस अब लड़ाई झगड़ा शुरू। तो जिसके अंदर तकब्बुर, उसके अंदर माल की हिर्स भी, जिसके अंदर तकब्बुर उसके अंदर रिया भी, जिसके अंदर तकब्बुर उसके अंदर गुस्सा भी, जिसके अंदर तकब्बुर उसके अंदर हसद भी, इन्हें बशायक ने फरमाया ये उम्मुल अमराज, इसमें तकब्बुर हुआ सारी बातनी बीमारियां उसके अंदर होंगी। जिसके अंदर तकब्बुर होता है उसके अंदर शहमत का मर्ज भी ज्यादा होता है। क्यों ये शहमत का मर्ज ज्यादा होता है? वो तकब्बुर शख्स जो है मैं आपको बड़ा समझता हूं, और बड़ा जब अपने आप को समझता है तो ये समझता है कि बस जो मेरी तबीयत चाहेगी, जो मैं चाहूंगा मैं कर लूंगा। तो जब शहवत का तकाजा होता है तो ना हलाल देखा ना हराम देखा, बस अपना तकाजा पूरा कर लिया। متکبر شخص کو اللہ رب العزت کئی مرتبہ شہوت کے گناہوں میں پھنساتے ہیں، تو ان گناہوں کی اینڈ پہ انسان پہنچ جاتا ہے، اس لیے پہنچتا ہے کہ اللہ اس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تو بہت اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، دنیا تجھے نیک سمجھتی ہے، مگر تیرے تکبر کی وجہ سے تیری اصلی حالت یہ ہے۔ مشاہد نے فرمایا کہ متکبر شخص جو ہے اس کے اندر ہر باطنی مرض موجود ہے۔ متکبر شخص کے بارے میں مشاہد نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ پہاڑ پہ کھڑا ہو کے ہر ایک کو نیچے دیکھ رہا ہے اور سب کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ پہاڑ پہ جو کھڑا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ سب چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی اس کے مقابلے میں بڑا نہیں، اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ جو نیچے کھڑے ہونے والے ہیں ان کو بھی یہ چھوٹا ہی نظر آ رہا ہو۔ متکبر شخص سب کو چھوٹا سمجھتا ہے، مگر اللہ کی شان کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت نہیں جاتی، لوگ بھی اسے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ امریکہ کے ایک سائیکالوجسٹ ہے، جورج میسن یونیورسٹی، جورج ٹاؤن یونیورسٹی، وہاں کی بڑی یونیورسٹی مشہور، ڈان ایمرسن اس کا نام، جارجیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر۔ بڑا انہوں نے سوچا کہ یہ جو لوگ عاجزی کرتے ہیں، یہ عاجزی جو ہے اس کا فائدہ بھی ہے یا اس کا فائدہ نہیں ہے، اس پہ یہ ریسرچ کرنا چاہتا، یہ اس کا ریسرچ ٹاپک تھا، مقالہ اس نے اس پہ لکھنا چاہا۔ بہت عرصے ریسرچ کرتا رہا، بہت عرصے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ عاجزی پہ ریسرچ کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ کسی کے دل میں کتنی عاجزی ہے اس کی جو مقدار ہے اس کا پتہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ جی یہ جو عاجزی ہے یہ کوئی مقدار کسی کے دل میں جو ہے وہ فکس نہیں ہے، کسی وقت یہ عاجزی زیادہ ہے تو کسی وقت یہ عاجزی کم ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں نے اس پہ ریسرچ شروع کی تو مجھے یہ بڑا مشکل لگا اس پہ ریسرچ کرنا، مگر پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھ بہت سارے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو ملا جو اس ٹاپک پہ ریسرچ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا ہم نے کافی سارا وقت لگایا، چند سال لگایا، اور چند سال بعد ہم اتنے سارے 12-15 لوگ سب کے سب پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ہم نے یہ عاجزی پہ ریسرچ کی، اور ہم نے یہ ریسرچ جو ہے یہ ہزاروں لوگوں پہ کی، ہزاروں لوگوں سے پوچھ گچھ کی، اور اس نے کہا کہ ہم یہ نتیجے پہ پہنچے کہ عاجزی پہ ریسرچ کرنا تو بڑا مشکل ہے، مگر ہم نے کہا کہ عاجزی سے متعلق 5 چیزوں پہ ہم اگری کر گئے، یعنی ہم سب کا اتفاق ہو گیا کہ عاجز بندے کو یہ 5 چیزیں ضرور ملتی ہیں، عاجزی سے متعلق 5 چیزوں پہ ہم سارے ریسرچ کرنے والے ہم اگری کر گئے۔ اور اس نے کہا پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو عاجزی ہے نا یہ انسان کے اندر عام حالات میں پتہ نہیں چلتی، جس وقت وہ سٹریس پہ ہوتا ہے اس وقت اس کی عاجزی کا اصل پتہ چلتا ہے کہ یہ عاجز بندہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھا کہ یہ جو ہیوملٹی، انگریزی میں عاجزی کو ہیوملٹی کہتے ہیں، ہیوملٹی از بیسٹ ججڈ انڈر سٹرین، کہ جب حالات ایسے ہوں کہ جہاں حالات تھوڑے سے نرم گرم ہوں تب پتہ چلتا ہے کہ کسی کے اندر عاجزی ہے یا نہیں ہے، عام حالات میں نہیں تو انسان کا پتہ اسی وقت چلتا ہے کہ جب وہ سٹریس میں ہے، جب وہ کسی نہ کسی ٹینشن کے اندر ہے۔ اور یہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمائی، ان کے پاس کوئی آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت فلاں شخص جو ہے نا تو بڑا اچھا ہے، بہت ہی اچھا آدمی ہے، हजरत उमर ने फरमाया कि अच्छा तुमने कभी उसके साथ कोई मामलात किए हैं, कोई काम कारोबार कोई ऐसी चीज की है? उसने कहा नहीं। हजरत ने फरमाया कि जब तुमने कभी इसके साथ कोई सफर किया है? उसने कहा नहीं। तो फरमाया कि जब तुमने इन हालात में उसको नहीं देखा तो अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि ये कैसा इंसान है। तो पांच चीजें आजी के बारे में इन पीएचडी डॉक्टर्स ने लिखी और ये पांचों चीजें हैं कुरान और हदीस से साबित है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि ये जो आजी है ये इंसान को अपने अंदर नजर नहीं आती है कि उसके अंदर कितनी आजी है या कितना तकब्बुर है, दूसरा देखकर बता सकता है कि उसके अंदर कितनी आजी है या कितना तकब्बुर है। और यही बात नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, आपने फरमाया अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। इंसान को अपने अंदर की गलती आसानी से नजर नहीं आती, दूसरा आसानी से देख लेता है। इसलिए उर्दू का मशहूर मकूला है, जिस तरह दरख्त को अपने फल भारी नहीं लगते, इंसान को अपने गुनाह भारी नहीं महसूस। तो जिसमें जितनी ज्यादा आजजी होगी उतना ज्यादा वो अपने अंदर से वाकिफ होगा। तो इस पे भी ये पांच ही सारे डॉक्टर्स ने अग्री किया कि जी आजजी जो है बंदा खुद इतनी अच्छी तरह से नहीं देख पाता जितनी अच्छी तरह से दूसरे देख लेते हैं। इसीलिए दीन इस्लाम में अकाबरीन ने ये तरकीब बनाई कि जो भी हो जितने भी लोग हैं सबका किसी न किसी शेख से इस्लाह का ताल्लुक हो। इंसान अपने गुनाह अपनी इस्लाह खुद से करना थोड़ा मुमकिन है, मगर कोई शेख जो इस रास्ते पे चलने वाला है उसके साथ ताल्लुक रखते हैं तो इंसान अपने बातिन की इस्लाह अच्छी तरह से कर लेता है। इसकी मिसाल यूं समझे कि इंसान का एक कमरा है, उस कमरे को वो साफ करना चाहता है। अब अकेला साफ कर रहा है तो कभी उसका हाथ ऊपर तक पहुंच नहीं रहा, कभी उसको सही तरह से पता नहीं किन चीजों से मुझे साफ करना है। अब अगर वो अपने साथ एक और बंदे को मिला लेता है जो सफाई का काम करता रहता है तो अब सफाई जल्दी भी हो जाएगी और अच्छी भी हो जाएगी। और यही काम जो है ये शेख के साथ ताल्लुक का है, ये इधर भी एक कमरा है इसको साफ करना है। तो इंसान खुद से उसको पता ही नहीं है कि किस चीज से साफ करना है, किस तरह से साफ करना है। जब किसी शेख से ताल्लुक करता है तो फिर इस दिल को साफ करना आसान हो जाता है कि उसका काम ही है दिल की सफाई वाली लाइन है। तो पांच चीजों पे ये डॉक्टरों ने अग्री किया कि ये आजिसी से मुतालिक चीजों पे हम सब अग्री हैं, हम सब इत्तेफाक करते हैं। और पहली चीज ये कि ये जो आजिसी है इसका अंदाजा आम औकात में नहीं लगाया जाता है। जब इंसान बैठ के कोई चीज देख रहा है या पढ़ रहा है या खा रहा है जब स्ट्रेस का वक्त आता है ना तब पता चलता है कि ये आजिज बंदा है या नहीं है। दूसरी बात उन्होंने जिस बात पे इत्तफाक किया वो ये है कि आजिजी जो है वो अपने अंदर इतनी अच्छी तरह से नहीं देखी जाती, बल्कि आजिजी जो है वो दूसरा बंदा हमारे अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से देख लेता है। इसीलिए अकाबरीन ने हमेशा फरमाया कि किसी न किसी बुजुर्ग से इस्लाह का ताल्लुक होना चाहिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह वालों की बहुत सोहबत इख्तियार की और उनसे मैंने जो बड़ी चीज सीखी जो मेरी जिंदगी के लिए मशाल राह बनी वो दो चीजें हैं। एक ये कि वक्त एक तलवार है, अगर तुम उससे नहीं काटोगे तो वो तुम्हें काट देगी। और दूसरा मैंने बुजुर्गों से ये चीज सीखी कि अगर तुम अपने नफ्स को अच्छे कामों में नहीं लगाओगे तो ये नफ्स तुम्हें खुद ब खुद बुरे कामों में डाल देगा। और आज बुरे कामों में नफ्स जो है वो खूब डूब रहा है। जितनी ज्यादा जरूरत आज शायद किसी से इस्लाह के ताल्लुक की है शायद तारीख में कभी इतनी जरूरत ना हो। कि आज गफलत में और गुनाह में डालने के आलात वो आ गए हैं जो कभी तारीख में मौजूद नहीं। तो पांच चीजों पे इन तमाम डॉक्टरों ने इत्तेफाक किया आजी से मुताल। पहली चीज ये आजी जो है वो स्ट्रेस पे पता चलती है, और दूसरी चीज ये कि आजी खुद को नहीं पता चलती, दूसरे को ज्यादा पता चलती है, और तीसरी चीज ये कहा कि जो लोग आजी करते हैं उनके सोशल बॉन्ड्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी दूसरे लफ्जों में वो हर दिल अजीज होते हैं, आज इस बंदे से हर बंदा मोहब्बत करता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अपने प्यारे महबूब को फरमाया, वलौ कुंत फज़्लन ग़लीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्लू मिन हौलिक, के महबूब अगर आप भी सख्त दिल होते तो ये सारे आपके गिर से भी दूर भाग जाते। तो ये जो दिल की नरमी है आज सी है, ये हर बंदे को पसंद आती है। मुतकब्बिर से मुतकब्बिर शख्स भी होता है, उसको भी पता होता है कि ये बंदा बड़ा आजिज है, इससे दोस्ती हो सकती है, बाकी सबसे तो नहीं मिलता। आज इस बंदे के साथ हर बंदी को बंदा दोस्ती लगाता है, हर बंदा उसको पसंद करता है, वो हर दिल अजीज होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रब्बा, जो अल्लाह के लिए आदमी इख्तियार करता है तारा उसको बुलंदियां देते हैं, हर बंदे के दिल में उसके लिए जगह होती है। चुनाचे हदीस बाद में बाकी आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, किसी दूर के कबीले से मुसलमान था, और उसने आके अपने कबीले के हालात बताए कि जी कहत का वक्त है और लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, कुछ मदद करवा दो। मस्जिद में आप तशरीफ फरमाते और एक यहूदी करीब बैठा था, किसी काम से कोई बात करने वो आया था। जब उसने ये सारी बात सुनी तो उसने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि जी आपके पास भी इस वक्त कुछ नहीं है इसको देने के लिए, मेरे पास इस वक्त खजूरें हैं, स्टॉक पड़ा हुआ है, आप चाहे तो मैं आपको उधार दे सकता हूं, तारीख बता दे किस दिन आप मुझे ये वापस करेंगे, तो उस दिन आप वापस मुझे कर दीजिएगा, तो मेरे पास ये स्टॉक है, आप लेना चाहे उधार के तौर पर। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे उधार लिया और ये लेके, और ये जो बस्ती वाले आए थे जो बहुत ही शदीद तकलीफ में थे और तहत का वक्त था, उनको ये खजूर के चंद बोरे थे वो उनको दे दिए। तारीख भी तय हो गई कि फला तारीख को आप अलैहिस्सलाम ने ये वापस करने हैं। उस तारीख से चंद दिन पहले ये यहूदी एक दिन मस्जिद में आया और मस्जिद में आते दरवाजे से आवाज लगाई बड़ी बदतमीजी और बेअदबी के साथ, ए मोहम्मद कहाँ है वो पैसे जो तुम, कहाँ है वो खजूर जो तुमने मुझसे। नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा कराम के साथ तशरीफ फरमा, सारे मुड़के देखते कि ये कौन बदतमीज आदमी आया हुआ है। अगर उसने देखा कि आप अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे पे कोई जो है वो नागवारी नहीं थी, उसने देखा कि नागवारी नहीं है तो करीब आया और आकर आपके मुबारक कपड़ों को पकड़ा और कपड़ों को पकड़ के लुकेज के मेरे चीजें वापस कर। अल्लाह सहाबा इकराम का तो खून खौल उठा कि ये कौन आता है। उमर भी खड़े हो गए, उसने देखा कि ये सारे तो बड़े गुस्से में आए हैं मगर अल्लाह के महबूब के चेहरे पे कोई नागवारी नहीं। जब उसने देखा कि इनके चेहरे पे कोई नागवारी नहीं तो और इससे भी ज्यादा बदतमीजी पे, और क्या कहता है कि ये तुम जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हो ना, तुम ऐसे ही हो, उधार ले लेते हो, वापस करने की फिक्र ही कोई नहीं होती है। हालांकि अभी तारीख पड़ी थी, दिन बाकी थे कई सारे। उस वक्त हजरत उमर खड़े हुए और उन्होंने तलवार निकाली और कहा कि अगर अब तूने एक लफ्ज और कहा तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। तो जब हजरत उमर ने ये फरमाया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उमर ये सही नहीं जो बात तूने की है, उधार देने वाले को हक है कि वो अपने उधार की वापसी का मुतालबा कर सके। तो आपने हजरत उमर से ही फरमाया, अब जाओ और फला जगह हुजूर के बोरे पड़े हैं, तो जो जितने इनके बनते हैं इनको दे दो, और इतने इतने और ज्यादा भी देना। और वो इसलिए कि तुमने इनसे बड़ी गलत बात की। अल्लाह, चुनांचे नबी अलैहि सलातो वसलाम ने हजरत उमर के साथ इस यहूदी को भेजा और उसका सारा जो खजूर था उसको दे दिया वापस। वापस लेके वो गया नहीं बल्कि मस्जिद में वापस आया, और मस्जिद में वापस आके उसने कहा कि मैंने अब आपके हाथ पे दीन इस्लाम कबूल करना। सारे हैरान कि यहूदी और ये जो इतनी बेअदबी कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, इसको क्या हो गया? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, हमारी किताबों में नबी आखिर जमा की निशानी ये बताई गई थी कि जितना ज्यादा उनके साथ बेअदबी की जाती है, जितना ज्यादा उनके साथ जहालत की जाती है, उतना ज्यादा इनका हिल बढ़ता जाता है। आज मैंने ये देख लिया कि इस कायनात में आपसे ज्यादा बुर्दबार कोई नहीं, इसलिए मैंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। तो जहां आजजी होगी वहां दिल खिंचेगा, वो यहूदी हो या वो कोई और हो, दिल खींचने वाली चीज ये आजजी है। तो आज से मुतालिक पांच चीजों पे इत्तेफाक अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का। और पहली चीज उन्होंने कहा कि जी आज जी है ये इंसान की आज जी जो है वो स्ट्रेस पे पता चला। दूसरा उन्होंने कहा कि आज जी जो है वो अपने अंदर बंदा खुद नहीं देख सकता है, दूसरा अच्छी तरह से देख लेता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो आजिज बंदा होगा तो जरूर हर एक उससे मोहब्बत करने वाला। चौथी चीज उसने बड़ी अजीब कही, और उसने कहा कि जो शख्स आजजी करता होगा, बड़ी अजीब बात है वैसे, मतलब जो शख्स आजजी करता होगा उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। अजीब बात है कि जिसके अंदर आजजी है उसकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत कैसे? आजजी को सेहत से क्या होता है? उन्होंने कहा कि हमने हजारों लोगों पे रिसर्च की जिनकी तबीयतों में गुस्सा और जिनकी तबीयतों में तकब्बुर था उनकी सेहतें खराब, और जिनकी तबीयतों में आजजी थी उनकी सेहतें अच्छी थी। और फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि जी आजिज बंदा होता है उसकी कोशिश होती है कि लड़ाई झगड़ा आगे ना बढ़े। अगर लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए उनको माफी मांगनी पड़ती है तो माफी भी मांग लेते हैं, हक बात कर भी रहे होते हैं तो भी बहस छोड़ देते हैं, तो किसी को परमानेंटली दुश्मन नहीं बनाते। तो परमानेंटली जब किसी को दुश्मन नहीं बनाते तो परमानेंटली जहन के ऊपर स्ट्रेस नहीं होता। किसी ने ज्यादती कर भी तो उसको माफ कर दिया। और यही तमाम चीजें अल्लाह के प्यारे महबूब देख सकते हैं। यदि अगर कोई बहस करे तो तुम बहस करना छोड़ दो अगरचे तुम हक पर ही क्यों ना हो, और किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की और माफ कर दो उसको, ये माफ करने वाला अल्लाह का दोस्त बन जाता है। तो आजिज बंदा जो है वो अपनी लड़ाइयां खत्म कर देता है, नाराजगियां खत्म कर देता है। और जब ये लड़ाइयां नाराजगियां दिल में है ही नहीं तो दिल में सुकून है, और जिस दिल में सुकून नहीं लड़ाइयों को पकड़ के बैठ जाता है। यदि फला दिन फला साल में उसने मेरे साथ ये किया, और ये फला शख्स इसकी तबीयत यूं है, इसने मेरे साथ ये ज्यादती की और इसने मेरे साथ वो ज्यादती की, और यही ज्यादतियां जो है ये दिल में जिंदा है, अच्छाइयां है ही नहीं जिंदा किसी की, तो फिर ऐसा बंदा जो है वो स्ट्रेस में होता है। और ये जब इंसान स्ट्रेस में और टेंशन में होता है ना, और इससे भी लड़ाई है और इससे भी लड़ाई है, इससे भी मूड खराब, इससे भी मूड खराब, ऐसे बंदे के अंदर जो है वो 8 बीमारियों में से कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है, और ये 8 बीमारियां एक के बाद एक लिखी भी है, किताबों में भी है, और ये तजर्बा है कि जो बंदा ज्यादा मुतकब्बिर होता है, ज्यादा लड़ाइयां करता है, ज्यादा उसकी तबीयत में माफ करना मौजूद ही नहीं है, तो या तो उसको कल्ब की बीमारी हार्ट डिजीज होगा, या उसको ब्रेन डिजीज होगा, या उसको नर्व्स का डिजीज होगा, उसकी नर्व्स पिंच हो जाती होगी, या फिर उसको जो है वो या फिर उसको जो है वो स्टमक डिजीज, बहुत सारे लोगों को जो है वो एसिडिटी और अल्सर्स पेट में हो जाते हैं, या फिर उसको मसल्स का स्टिफनेस का वो होगा, इंसान जो स्ट्रेस में होता है उसके जो पट्टे हैं वो खिंच जाते हैं, या फिर उसको बाउल डिजीज होगा कि वो इंसान जो है जब वो अपने आप को उसका पेट जो है वो सही तरह से फंक्शन नहीं, उसका मैदा फंक्शन नहीं करेगा तो उसको पखाना सही तरह से नहीं आएगा, ये जो अंदर का सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह ऐसा बंदे को कई मरतबा जिनसी बीमारी हो जाती है और वो सही तरह से अपने जिनसी हुकूक अदा नहीं कर सकता, तो डॉक्टर्स ने लिखा कि जिस बंदे को स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस वाला बंदा किसी भी वजह से स्ट्रेस है, अंदर 8 बीमारियों में से कोई बीमारी जरूर होगी। जो शख्स आजी करता है, लड़ाई झगड़े खत्म कर देता है, कोई बहस कर रहा है तो बहस में उसको कहता है ठीक है यार तू सही है, कि आज जो हम लंबी लंबी बहस बेगम के साथ करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, ये अपना स्ट्रेस बढ़ा रहे, भाई ये वाली जंग तो जीत भी नहीं सकते, कहाँ जीत सकते हैं। तो नबी ने सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत में दाखिले की जमानत लेता हूं जो बहस करना छोड़ दे अगर चे वो हक ही पर क्यों ना हो। तो ये बहस जो है इंसान का स्ट्रेस बढ़ा, तो मुमकिन है कि किसी ने ज्यादती कर भी ली है, बिल्कुल होता है, जिंदगी दुनिया है ये ऐसी है। ये जन्नत होगी जहां कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा, मगर बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को माफ कर देता है, दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखता। दिल में किसी के लिए नफरत जब नहीं रखी तो अपनी जिंदगी संवार ली, आखिरत तो संवार ही नहीं कि अल्लाह के प्यारे महबूब की सुन्नत पर अमल किया, मगर दुनिया भी आसान हो जाती है, दुनिया की बीमारियों से, दुनिया की परेशानियों से, दुनिया की तकलीफों से इंसान बच जाता है। तो 5 चीजों पे इन तमाम पीएचडी डॉक्टर्स ने इत्तफाक कर लिया, जिसके अंदर आजजी होगी 5 चीजें जरूर साथ होंगी। एक तो ये कि आजजी जो है ये इंसान के आम हालात में नजर नहीं आती, आजजी है या नहीं है स्ट्रेस में नजर आती है। दूसरा, आजजी इंसान को अपने अंदर नजर नहीं आती, दूसरे में पता चलेगा कि है या नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा कि आज इस बंदा जो है वो हर दिल अजीज होगा, हर बंदा उससे मोहब्बत करेगा जो अपने आप को छुपा के रखिएगा। और चौथी चीज उन्होंने कहा कि जो आजजी करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सुकून देंगे, उसको बीमारियों से, जाहिरी बीमारियों से बचा रहे। हदीस बाग में आते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कसम खा के कहता हूँ, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कसम खा के कहता हूं कि जिस शख्स पे जुल्म हुआ और उसने उस जुल्म पे सब्र कर लिया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी इज्जतों में इजाफा करवा देते। कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, माफ करना ज्यादा फायदेमंद है, पीछे पड़ जाना नुकसान है। तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी को नुकसान पहुंचाया अल्लाह उसको नुकसान पहुंचा देगा, जिसने किसी को तकलीफ में डाला अल्लाह उसको तकलीफ में डालेंगे, कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो जिसके अंदर आजजी होगी अल्लाह ताला उसको सुकून अता फरमाएंगे, सारी बीमारियों से भी महफूज फरमाएंगे। और पांचवी चीज जिस पे ये डॉक्टर्स के सब ने इत्तफाक किया, ये भी बड़ी हैरान कर चीज है, प्रगा के जहां आजी होगी वहां ग्रोथ इन आउटपुट होगी, या वहां पे रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये भी फिर समझ में आने वाली चीज नहीं है कि आजिज जो लोग होंगे उनका रिस्क ज्यादा होगा, ये कैसे है? तो ये डॉक्टर्स हैं, इन्होंने एक किताब का हवाला दिया, किताब लिखी है फ्रॉम गुड टू बेटर। ये किसी कारोबारी शख्स ने किताब लिखी और उसने मुआयना किया तो 200 से 250 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सारी कंपनीज एवरेज प्रॉफिट्स कमा रही हैं। और उसने कहा कि इन सारी कंपनियों के जो सीईओस थे, कंपनी चलाने वाले जो लोग थे, वो बहुत ज्यादा मुतकब्बिराना तबीयत थी, लड़ाई झगड़े की तबीयत थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने सीईओ को बदल के और बहुत ही हम्बल किस्म का सीईओ, आजिज किस्म का सीईओ लेके आए, ये सारी कंपनियों की ग्रोथ जो है ये बढ़ गई। ये इस किताब के अंदर उन्होंने उन कंपनीज के नाम भी लिखे और उनकी ग्रोथ कितनी कितनी बड़ी ये भी लिखा। उन्होंने कहा कि जहां आजिज होगी वहां रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। यही बात अल्लाह ने अपने कलाम में दर्ज कर दिया। हम अगर अपने बंदे के रिस्क को बढ़ा देते हैं तो वो जमीन में बगावत करने लगते हैं। तो जो शख्स जमीन में बगावत नहीं करता, आजिज़ी करता है, उसका रिस्क अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी से बढ़ा देता। तो पांच चीजें जिस पे तमाम डॉक्टर्स ने इत्तेफाक किया कि आजिज़ी करने वाले को फायदा होता है। एक आखिरी बात कर आज की बात मुकम्मल करता हूँ। आजिज़ी जो है इसके बगैर अल्लाह के करीब होना नामुमकिन है। उन्होंने फरमाया है वो जान जिसने अपने तक पहुंचने के लिए आजिज़ी के आए और उन्होंने आके बताया कि हजरत अल्लाह ने माल भी बहुत दिया है और अल्लाह ने इल्म भी बहुत दिया है, ओहदा भी बहुत बड़ा दे दिया कि दारुलूम का मुझे सदर बना दिया, और अल्लाह ताला ने जाहिरी तौर पे भी बहुत, अल्लाह ने उनको बड़ी खूबसूरती जाहिरी खूबसूरती भी बड़ी दी थी। तो एक वो वक्त था कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर होते थे ना, वो भी बहुत ज्यादा उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते थे। बड़े बड़े ओहदेदार कहते थे कि जी इनसे मुलाकात करनी, अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी हुई थी। तो आके हजरत की खिदमत में अर्ज किया कि हजरत ये सारी चीजें जब देखता हूँ तो कभी कभी दिल में बात पैदा होती है कि शायद मैं कोई बड़ा हूँ, तो ये बीमारी जो है इसको दूर करना चाहता हूँ, आज ही पैदा करना चाहता हूँ, तो क्या चीज पढ़नी चाहिए कि ये आज ही पैदा हो जाए? अगर ने फरमाया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आने जाने की जरूरत है, आया जाया करो, और जब यहाँ आओ तो खानकाह में आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी जूतियां सीधा कर दिया करो। शायद किस वक्त में आना, ये आजिज़ी पैदा करने के लिए है। अल्लाह ताला हमें ये नेमत नसीब फरमाए और तकब्बुर जैसे गुनाह से उम्मुल अमराज से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आखिर दावा दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हटकर के अल्लाह की याद में डूब जाए। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर ले, आंखों को बंद कर ले, सर को झुका ले। नहीं तेरी चौखट पर भी काजी बन के आया इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सराफा फख्र हूँ तिजो नदामत साथ लाया हूँ, सराफा फख्र हूँ तिजो नदामत साथ आया भिखारी वो के जिसके हाथ झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिरसो हवस ने मार डाला है, तेरे दरबार में लाया अपनी जुबुहानी, तेरे दरबार में लाया अपनी जुबानी, तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली, तेरी चौखट के लाइक हर अमल से हाथ है खाली, लुटा कर सारी ऊंची गफलतों में सियां के दलदल में, कर सारी पूजी गफलतों के दलदल में, सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आँचल दे, सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आँचल दे, ये आँखें खुश हैं यार रो ना नहीं आता, आंखें खुश हैं यार इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग है दिल में जिन्हें धोना नहीं आता, सुलगते दाग है दिल में जिन्हें धोना नहीं आता, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सराफा फख्र हूँ ندامت ساتھ لایا لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما, ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, لسیدہ رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما, اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما, اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما, لدر در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما, لنفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, لنفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, میرے مالک جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا, اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دی, نہ تیرے کمزور بندے ہیں, نہ کبھی شیطان ہمیں کہیں لے جاتا ہے, نہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں کسی غلط راستے پہ ڈال دیتی ہے, اے اللہ کمزوروں کے حال پر رحم کر, نہ تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتے, میرے مالک کمزور ہیں, نہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا, نہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے, میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, ہواؤ ہرس والا دل بدل دے, میرا غفلت پہ ڈوبا دل بدل دے, لا اس دل کو بدل دے, نہ کہاں یہ دل لگانا تھا, نہ کہاں یہ دل لگا بیٹھے, اللہ ہمارے حال پر رحم کر, اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں, اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا لوگ لٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ زیادہ مہربانی کرتے ہیں, اللہ آپ کو سب سے بڑھ کر مہربان ہے, اللہ ہم لٹے ہوئے کے حال پر مہربانی فرما, اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فزیل بن عیاض جیسے لاکھوں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں, اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے, اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے, اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری زندگی کا سوال ہے, اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما,
اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی لغو سب کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کربوں ہے، اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، اللہ رحمت تمام نہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ ہمارے دین و حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اے اللہ ان کی عزت اور ناموس پہ، میرے مالک ہمیں اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی اے اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ ان پر خوب کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بار بار ان کے در کی حاضری نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے دین و حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دین، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتے دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.
کل بروز جمعہ حضرت شیخ جو ہے وہ جمعے کی نماز اطاعت مسجد میں پڑھائیں گے، جامع مسجد اطاعت میں شیخ حضرت اقبال صاحب دامن برکاتہم جمعے کی نماز پڑھائیں گے، جمعے کی نماز 2 بجے ہوگی اور